पांच आपको सेक्टर्स बताता हूँ
एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी,
जबरदस्त ग्रोथ सेक्टर। सबसे पहले तो मैं फिर आईटी सर्विसेज और बीपीओ के बारे में कहूंगा, क्योंकि इंडिया इज नाउ द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा हेल्थ, कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ केयर का प्रोविजन भी ज्यादा जरूरी होता चला जाएगा। चौथा सेक्टर जो मैं मानता हूँ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स। और जो मैं पांचवा एरिया मैं मानूंगा वो मैं कहूंगा कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और इंडिया में इतना वॉल्यूम है, इतना स्केल है कि हम लोग यहाँ बढ़िया तरीका से करें तो हम लोग विश्व के लिए एक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी बन सकते हैं।
जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ज्यादा ना उड़ो मत। ये सब तो सुना होगा हमें, हमेशा सोसाइटी ये बोलती है कि जो है उतने में खुश रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो जो है वो भी खो दोगे। पर क्यों? अगर हम ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा देख सकते हैं, तो फिर ज्यादा पाने की चाह क्यों नहीं रख सकते? और अगर कुछ नया पाने के लिए हमने ट्राई कर लिया, कोशिश कर भी ली और हमें नहीं मिला, तो ज्यादा क्या होगा? कुछ नया सीख ही जाएंगे ना। तो इसीलिए ज्यादा सपने देखो और ज्यादा सपनों को पाने के लिए दम रखो, क्योंकि जब ज्यादा सपने देखोगे तभी तो ज्यादा मिलेगा। एंड आज के गेस्ट उसी बात पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको पहले इंजीनियर बनना था तो वो आईआईटी दिल्ली में चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ना एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है, तो वो वर्ल्ड की टॉप कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर बन गए यूएस में। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें ना इंडिया में वापस आकर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पार्ट लेना है, तो वो एक बहुत बड़ी वीसी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। एंड फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे इंडिया में पॉलिटिक्स ज्वाइन करके सर्व करना है, तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए। एवरी पॉइंट पे उन्होंने ये सोचा कि मुझे और चाहिए, और उन्होंने उसको पाने की कोशिश करी और फिर मिलता भी गया। टुडेज गेस्ट इज मिस्टर जयंत सिन्हा, जिनसे हमने बात करी है कि चाइना और इंडिया में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इंडिया डेवलप कैसे होगा, इंडिया को कौन सी सात बातों का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे आप और मैं पार्ट लें तो हम इंडिया को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं, फिर हम चाइना और दूसरी फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज से क्या सीख सकते हैं, और कौन सी सी मिस्टेक्स है जो हम नहीं करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो होगी। इन ऑल द होल पॉडकास्ट इज अबाउट ड्रीम्स, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ एवरी इंडिविजुअल कैन ड्रीम मोर एंड अचीव मोर इन दिस कंट्री। एंजॉय द शो, एंड बिफोर यू एंजॉय द शो गो सब्सक्राइब राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने वैल्यूएबल कॉन्टेंट लाते हैं जिससे आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। एंजॉय द शो। ऐसा नैरेटिव क्यों है, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड इन यंगर जनरेशन, कि मोस्टली पॉलिटिशियन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्रीज नहीं होती, बहुत एजुकेटेड नहीं होते पॉलिटिशियंस, जो जिनमें लोकल इन्फ्लुएंस का पावर होता है वो यूजुअली पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, ऐसा क्यों है? इज़ इट अ फैक्ट?
वास्तविकता, वास्तविकता तो ये है कि राजनीति में संघर्ष बहुत है, राज बहुत संघर्ष है, और आपको अपना करियर बनाना है राजनीति में तो बहुत समय लग जाते हैं। आप पंचायत स्तर से आप आरंभ करें, पंचायत से फिर प्रखंड मतलब ब्लॉक लेवल आएं, फिर आप जिला लेवल आएं, जिला से फिर आप राज्य स्तर पे आप आएं, धीरे 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 करते 20-25-30 साल आपको लग जाते हैं जब तक आप एक विधायक या आप एक सांसद बनते हैं। तो ये बड़ा संघर्ष का एक करियर है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में लग जाते हैं, जो आईआईटी चले जाते हैं या अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो लोग ये संघर्ष करने से डरते हैं, और उनको लगता है कि संघर्ष करेंगे तो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि जो आपको अपसाइड मिलनी चाहिए, वो बहुत ही अनसर्टन है। मिले ना मिले, परिवार का क्या होगा, सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़े प्रश्न हैं राजनीतिक किसी भी करियर में। तो इसलिए राजनीतिक करियर वही फिर लोग करते हैं जो लोग चाहे परिवार के कारण आ सकते हैं और आ जाते हैं, या और लोग करते हैं जो लोग कोई बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको एज अ साइडलाइन और एज अ एक एसोसिएशन इसका भी कर लें, उस तरीके से सोचते हुए आते हैं। तो मतलब करियर बनाना खासकर उन लोगों को जो प्रोफेशनली इंक्लाइन है बहुत मुश्किल है। तो एजुकेटेड लोगों को आना राजनीति में मैं मानता हूँ बड़ा मुश्किल है। आप तभी आ सकते हैं अगर कोई आपको सहयोग दे।
तो डू यू थिंक कैप लगा देना चाहिए कि यंग लोग नहीं आए, ओनली रिटायर्ड या एक्सपीरियंस, इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, या यंग में भी हो तो ये क्राइटेरिया है। डू यू थिंक पॉलिटिक्स में आने के लिए एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए?
नहीं, क्राइटेरिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता पसंद करती है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया जनता के मन में खुद ही होते हैं, और जब चुनाव होता है तो जनता तय कर लेती है कि उनको क्या पसंद है। कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर समाज सेवा की हो, कोई बड़े डिग्रीज नहीं हासिल की हो, लेकिन बहुत ईमानदार हैं, बहुत मिलनसार हैं, सबका काम अच्छा करते हैं, तो क्यों ना उनको वोट दिया जाए। तो ये जनता को तय करने दीजिए, हम लोगों को क्राइटेरिया लाने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता खुद ही मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है।
ट्रू। आप आपके पॉलिटिक्स के करियर को कैसे देखते हो? कंसल्टिंग करियर ज़्यादा देखते हो कि ये कंसल्टिंग में जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था वो मैं इधर ला के आऊँगा एक्सपीरियंस, कि वीसी बिजनेस जैसे देखते हो?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने राज। दोनों, क्योंकि देखिए क्या है ना कि कंसल्टिंग में एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी पड़ती है। आप कोई समस्या को देखें, आप समझने की कोशिश करें कि इसमें आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिर इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, ये समाधान रियलिस्टिक है कि नहीं, इसको हम लोग ज़मीन पे उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं। तो ये सब कंसल्टिंग में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है, जो उपाय निकालने पड़ते हैं, वो आदमी बड़े अच्छी तरीके से इसमें अनुभवी हो जाता है, आपकी क्षमता बहुत बन जाती है इस प्रकार के समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो ये कंसल्टिंग का फ़ायदा है। आप जब निवेशक हैं तब दो बातें बड़ी मुख्य होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको समय कहाँ देना है, आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, जो जो चीज़ें हैं जिसमें आपका ज़्यादा प्रभाव हो, ज़्यादा रिटर्न हो, उस पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हों, आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम वहाँ करिए जहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा है, जहाँ इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो वो इन्वेस्टिंग वाली एक माइंडसेट की बात होती है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट में माइंडसेट में बड़ा एक अच्छा आदमी एक मामला सीखता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, कि डाउनसाइड से आप बचे रहिए, कि भाई अगर हम इसमें निवेश करते हैं तो इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। तो गड़बड़ के बारे में भी, रिस्क के बारे में भी सोचने की वो क्षमता, अनुभव आपका जो है बनने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों को अगर जोड़ लें, इन्वेस्टिंग माइंडसेट को भी जोड़ लें और कंसल्टिंग माइंडसेट को भी जोड़ लें, तो मेरा मानना है कि आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं।
एक एग्जांपल दोगे कोई जहाँ पे आपने, आप करंट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इन योर पॉलिटिक्स करियर, या करी हो, जिसमें आपने इस पैटर्न को यूज़ किया हो कि ओके ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये मैं प्रायोरिटाइज करूँगा कि 10 प्रॉब्लम थे लेकिन इस पर मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज करूँगा, और यहाँ पे ये एनालिटिकल ब्रेन यूज करके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ाऊंगा।
अक्षय पात्रा एक ऐसा रसोईघर है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील दे सकते हैं, यानी जो दिन का जो उनका भोजन होता है स्कूल में। अक्षय पात्रा एक एनजीओ है जो आज के समय बहुत जगह रसोईघर, यानी बड़े लार्ज स्केल में किचन ये लोग चला रहे हैं, और इन किचन के द्वारा आप 50,000 बच्चों, 1,00,000 बच्चों का रोज का पौष्टिक आप भोजन दे सकते हैं। तो ये मुझे एज एन इन्वेस्टर लगा कि अगर हजारीबाग और रामगढ़, मेरे दो जिले हैं, हजारीबाग और रामगढ़ में बच्चों के लिए हम लोग अक्षय पात्रा के रसोई घर को बनवा लें, तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत बढ़िया इसका प्रभाव होगा। क्योंकि सब जो रिसर्च किया गया है उसमें पता चला है कि अगर आप पौष्टिक अच्छा अच्छा खाना लोगों को, बच्चों को खिलाइए, तो एक तो उनका जो है शारीरिक विकास होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, स्कूल में हाजिरी अटेंडेंस भी बढ़ जाती है, स्कूल आने में उनको मज़ा आता है, तो स्कूल के आउटकम्स भी, आपके लर्निंग आउटकम्स भी बेहतर हो जाते हैं। तो अगर आप इसको निवेशक के तौर पे देखें तो स्पष्ट ये नज़र आता है कि ये बहुत ही प्रभावशाली काम हो सकता है, क्योंकि लाखों बच्चों को पूरे क्षेत्र में इतना बढ़िया आप एक साधन दे सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मामला हुआ। अब हुआ कि कंसल्टेंट कि इसको करना कैसे है, तो हमने क्या किया कि जब हम विमानन मंत्रालय में थे तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CSR के तहत हम लोगों ने हजारीबाग के लिए 20 करोड़ CSR के तहत हम लोगों ने अक्षय पात्रा को दिलवाया रसोई घर को बनाने के लिए। साथ साथ कोल इंडिया से मांग कर हम लोगों ने करीब 24 करोड़ का पैसा रामगढ़ के लिए भी हम लोगों ने दिया, जिसमें कि रामगढ़ में भी हम लोग इस प्रकार का रसोई घर बना सकते हैं।
क्विक क्वेश्चन, क्योंकि मैं ना हर चीज़ को, बिकॉज यू हैव बीन VC एंड बिजनेस, आप अंडरस्टैंड करते हो, थोड़ा बिजनेस जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड उस टीम से कोशिश कर रहा हूँ समझने की। आप जो पोजीशन पे अभी इलेक्ट होते हो, जो स्पेसिफिक आपका एक डिपार्टमेंट होगा, उसका मतलब सबसे मेन
संसदीय क्षेत्र के आप सांसद
हो, हाँ, तो वो सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जी,
तो आपका सबसे मेन गोल क्या होता है और आपके अंडर में कितनी बड़ी टीम होती है व्हेन यू बिकम, बिकॉज देयर इज अ टीम ऑलरेडी, सो टेक्निकली इन सिंपल वर्ड्स एक वेल रन इंजन है ऑलरेडी, एक मशीनरी होती है उसको आप लीड करने जाते हो ताकि आप और बेटर तरीके से चला पाओ।
नहीं, मशीनरी तो बनानी पड़ती
है, मशीनरी बनानी पड़ती
है।
ओके,
ऐसा है कि आपके जो सांसद हैं संवैधानिक तौर पे, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप देश के कानून बनाएं, देश के आप कानून बनाए। आप देखिए, संविधान का संशोधन करना पड़ता है। अभी आरक्षण हुआ, महिलाओं का आरक्षण हुआ, जिसमें हम लोगों ने तय किया कि सब लोकसभा विधानसभा में एक तिहाई 1/3 जो सीट्स हैं वो हम लोग महिलाओं के लिए रिजर्व करें। ये संविधानिक संशोधन था। वी हैड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो देश का धरोहर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो धरोहर है। तो जब हम लोग सदन में मिलते हैं, चर्चा होती है, उसको पारित करते हैं, हम लोग खुद वोट देते हैं, वोट को गिना जाता है, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आता है। हम लोग कानून बनाते हैं, जैसे 3 तलाक का हम लोगों ने कानून बनाया, हम लोग बजट पारित करते हैं। तो संवैधानिक तौर पे आपके सांसद की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दिल्ली में है कि आप कानून बनाइए, संविधान का संशोधन करिए, देश का जो बजट है उसको पारित करिए, जो आपको अपने क्षेत्र की समस्याएं नजर आ रही हैं उस पर सरकार से उनकी जवाबदेही मांगिए। ये आपके सांसद की जिम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लेकिन क्या है कि जब आप क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्र में लोगों की सोच ये होती है कि आपका काम है कि क्षेत्र का विकास करें। हाँ। संवैधानिक क्या जिम्मेवारी है, दिल्ली में आप क्यों हैं, कानून बनाना कितना जरूरी है देश के लिए, वो अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं हरदम यही अपनी जनसभाओं में राज कहता हूं कि आपने वोट देकर हमको तो दिल्ली दफा कर दिया, आपने हमको जिला कार्यालय तो भेजा नहीं, आपने हमको रांची तो भेजा नहीं, आपने वोट देकर मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली किस लिए भेजा? दिल्ली इसलिए तो नहीं भेजा कि हम आपकी सड़क बनाएंगे, चापाकल बनाएंगे। अगर वो सब होता तो हम जिला कार्यालय में बैठते या रांची में बैठते। लेकिन आपके मुखिया हैं, आपके विधायक हैं, स्थानीय विकास के लिए अधिकांश जो काम है वो आपके मुखिया और आपके विधायक को करना है। आप सांसद को वोट देते हैं जिसमें देश को कैसे चलाना है, देश के कानून कैसे बनाना है, इसलिए आप अपने सांसद को आप चयन करते हैं।
जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे जब ये आया था, क्योंकि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट बनाना है और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ था, क्योंकि मैंने जब आप कह रहे हैं पढ़ना स्टार्ट किया था गूगल पे और हर जगह से, तो मुझे काफ़ी आपके आर्टिकल्स दिखे कि ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो इंडिया को आगे लेके जाएगी, हम चाइना के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट इंडिया को कैसे बना सकते हैं, राइट। तो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था, क्योंकि दीज आर द थॉट्स दैट आई वुड वांट टू नो, और मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू हर कोई जाने कि कैसे एक बहुत ही एनालिटिकल कंसल्टेंट
नहीं, प्रैक्टिकल माइंडेड,
प्रैक्टिकल माइंडेड हुए, उन्होंने मल्टीपल स्टेजेस पे मल्टीपल चीज़ें देखी है, ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज को बढ़ते हुए देखा है, इंडिया में छोटे छोटे गांव में जाके देखा है, तो उनको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है
जी
अबाउट कि ओके प्रैक्टिकल क्या है और बातें क्या है और क्या कर सकते हैं
जी।
तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि ओके हम इंडिया में बात करेंगे, तो अब यहाँ से ना नेक्स्ट 1 आवर Let's just talk about India and future of India.
बिल्कुल, जरूर जरूर।
एक क्वेश्चन इंडिया के ऊपर मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है क्या कि इंडिया में पूरा वर्ल्ड बोल रहा है अभी अपॉर्चुनिटीज का लैंड है, राइट? पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि इंडिया में पैसे लगाओ, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टाइम भी यहीं लगाओ, एफर्ट भी यहीं लगाओ, पैसा भी यहीं लगाओ, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इन द वर्ल्ड, एंड प्लस वन जो थ्योरी है चाइना के साथ, उसके बाद तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा नाम बढ़ने लगा है। टू एक्सप्लेन एवरीबडी, प्लस वन इज़ कि जब कोविड हुआ तो बहुत सारे एलिगेशंस थे चाइना के ऊपर कि ये सही हो सकता है वहाँ से आया हो, नहीं आया हो, बहुत लोगों का सप्लाई चेन था पूरा रुक गया, क्योंकि देश पूरे वर्ल्ड के लोग सिर्फ एक ही देश पर डिपेंडेंट थे कि वो हमें मैन्युफैक्चर करके चीज़ें देंगे, तो इसलिए पूरा वर्ल्ड चाइना से बनवाता था चीज़ें, क्योंकि वो एक देश पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि चाइना ने जैसे ही अपने आप को बंद किया पूरा वर्ल्ड एक तरीके से अटक गया, एक वर्ल्ड की पूरी जो इंजन था वो वर्ल्ड का रुक गया, इसलिए सब लोगों ने सोचा कि यार हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि एक तो वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक भी नहीं है, और दूसरा एक ही देश पे डिपेंड रहने पे कल पे कुछ भी खराब होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए
वही रिस्क मैनेजमेंट वाली,
वही रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए लोग ढूंढने लगे सेकंड ऑप्शन कौन सा था, तो वर्ल्ड में सबसे बेटर प्लेस सेकंड ऑप्शन इंडिया था, तो इसलिए वो प्लस वन के बाद लोगों ने ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए चाइना प्लस वन हर बड़ी कंपनियां एक्सप्लोर कर रही है। जैसे एप्पल पूरा अपना माल चाइना में बनवाता था, तो अब वो बोल रहा है कि प्लस वन मैं इंडिया से भी बनवाऊंगा ताकि वो अपना रिस्क मैनेज कर पाए। दिस इज व्हाट प्लस वन थ्योरी इज। ओके, तो प्लस वन क्या, तो इंडिया के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटी का लैंड है, हर कोई आना चाह रहा है, राइट। लेकिन एक जो थोड़े पेसिमिस्टिक लोग हैं, जो पेसिमिस्टिक साइड है, वो दो चीज़ों में बात करते हैं बहुत स्पेसिफिक। एक कि इंडिया इज नॉट रेडी, इंडिया की तो अपॉर्चुनिटीज तो है, बट शायद हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बाद भी यूथ इज़ नॉट वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड इनफ कि वो इतना बड़ा लेवल पे अपॉर्चुनिटीज ले पाए, राइट। हमारे पास इतना स्किल्ड हम लोग स्किल्ड नहीं है, दैट सिंपल है। सो ये हो सकता है कि ये लॉस्ट डेकेड हो जाए, जो लैटिन अमेरिका के साथ हुआ, कि एक टाइम पे लोग देख रहे थे लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील, मेक्सिको, कि जितना अमेरिका जितना बड़ा बना, ये लोग भी दूसरी कंट्रीज भी उतनी बड़ी बनेगी, बट वो शायद नहीं बनी क्योंकि वो लोग लॉस कर गए एक्स वाई जी रीजन के, उनकी अपॉर्चुनिटी चले गई। तो लोग कंजर्वेटिव लोग बोलते हैं एक तो कि इंडिया के साथ भी हो सकता है लॉस्ट डेकेड हो जाए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो दैट इज वन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड देन आई टॉक अबाउट अ सेकंड प्रॉब्लम।
नहीं, आपने तस्वीर बहुत अच्छी बनाई राज, आपने सब जो फैक्टर्स हैं मोटा मोटी आपने उन सबको बता ही दिया है। मेरा मानना है, और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है ये कहकर कि ये अब भारत का अमृतकाल है, वो बिल्कुल सही है, भारत का अमृतकाल अब आ गया है, अगले 20, 25, 30 वर्षों में भारत एक विकसित भारत भी बनेगा, एक हरित भारत भी बनेगा, यानी डेवलप्ड इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये दोनों होने वाले हैं। और इसमें खासकर आज की जो युवा हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है और बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसलिए अगर मैं आपकी उम्र का होता राज, तो क्या बात होती, क्या बात होती। मैं तो अब थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जो आप लोगों के सामने अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी कमाल की हैं, इतनी गजब की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मोटा मोटी करीब $4 trillion की हो गई, यानी 300 लाख करोड़ के आसपास की हो गई है, 4 लाख करोड़। और अगर हम पिछले 20 वर्षों को देखें तो पिछले 20 वर्षों में हम लोग 0.7 ट्रिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन तक आए, यानी $3 trillion हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। और इस कारण अगर आप देखें तो हमारी सड़कें बनी हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, शहरें जो हैं खड़ी हुई हैं। तो पिछले 20 वर्षों में जो, मतलब आपके जीवन के 20 वर्ष हैं जो आप याद करते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल नज़र आया होगा कि बहुत विकास हुआ है, ये पिछले 20 वर्षों में हुआ है। लेकिन अब आप आगे की ओर देखिए, $4 trillion जो है, हम लोगों की इकोनॉमी जो है 6-7% पे ग्रो कर रही है। इसको अगर आप देखें अगले 20 साल में, तो हम $4 trillion से लेकर 15-20 trillion तक हम लोग जाने वाले हैं, 15-20 trillion। तो जो हम लोगों ने $3 trillion का ग्रोथ देखा है, अब हम लोग 12-15 trillion का हम लोग ग्रोथ देखने वाले हैं। तो जो सड़कें बनी हैं, हवाई अड्डे बने हैं, शहरें बनी हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, इसको अब आप 4 गुना ज़्यादा, अब आप समझिए ये अगले 20 साल में होने वाला है। ये इतना बड़ा हम लोगों का अब इकोनॉमी जो हो गई है, इसका 6-7% ग्रोथ रेट कंपाउंड जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना प्लस वन हो गया है। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो भारत एकदम स्वीट स्पॉट पे है, सब लोग भारत को पसंद करते हैं। अभी हम मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस पे थे, हमने यही उनको बताया कि अगर $3 trillion हम लोगों ने ऐड किया, अब हम लोग $12 trillion ऐड करेंगे अगले 20 वर्ष में, 4 गुना होने वाला है। सब जो निवेशक थे ना राज, वो खड़े होकर उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, भारत माता की जय हुई, इतने वो उत्साहित हुए। क्योंकि हमें इतना ही उत्साहित होना है, क्योंकि ये हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास जैसे आपने कहा युवा है, यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे दुनिया भर में डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, यानी आबादी जो है वो घटती चली जा रही है। आप चीन की बात करें, चीन की आबादी जो है वो घटने की ओर बढ़ रही है, घट रही है। हम लोगों की आबादी अभी भी बढ़ रही है। आप यूरोप को देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें, अमेरिका को देखें, सब जगह आबादी घट रही है। सबको युवाओं की जरूरत है, मेहनती लोगों की जरूरत है, और वो भारत के पास है।
मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किधर है? बी वेरी स्पेसिफिक, आई वांट टू नो फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक लेंथ। हमने ये तो बात करी कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, ये भी बात करी कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी। हमारा हेल्थ केयर को सॉल्व बहुत तरीके से करा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व किया जा सकता है, एजुकेशन सॉल्व किया जा सकता है, ब्रांड्स बहुत अंडर पेनेट्रेटेड कंट्री है इंडिया में फ्रॉम रिपोर्ट।
नहीं, आपने सब तो बातें रखी थी, देखिए
पर आपको क्या लगता है कि फ्रॉम योर लेंस जो आज आप देखते
हैं? मैं पांच आपको सेक्टर्स बताता हूँ, एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त ग्रोथ सेक्टर, जबरदस्त ग्रोथ सेक्टर। सबसे पहले तो मैं फिर आईटी सर्विसेज और बीपीओ के बारे में कहूंगा, क्योंकि इंडिया इज नाउ द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से जो सोल्यूशंस और सर्विसेज, अब तो एआई भी आ गया है, उसके सोल्यूशंस एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, वेब थ्री के सोल्यूशंस एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, इसमें ग्रोथ होता ही रहेगा। जो बड़ी बड़ी हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनमें थोड़ा ऊपर नीचे तो रहता ही है, लेकिन तब भी ये बढ़ती चली जाएंगी और बढ़िया यहाँ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
पर आपको लगता है इसमें डिस्ट्रप्शन और बाकी स्पेस, मतलब कैन कोई नया इंसान आके बड़ी कंपनी बना सकता है इन स्पेसेस में?
बनाई भी जा रही है अब, पर उसमें अब थोड़ा प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास कंपनीज बन रही हैं, जैसे फ्रेशवर्क्स है, ऐसे ऐसे कंपनीज बन रही हैं, और इसमें बहुत सारे लोग यूनिकॉर्न्स भी बन रहे हैं। तो एक तो आईटी सर्विसेज और बीपीओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो तो जबरदस्त है ही।
ओके,
दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ जो इंडिया स्टैक हम इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, जो हम लोगों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, इंडिया स्टैक तैयार किया है, जिसमें आधार है, यूपीआई है, ओएनडीसी है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आ गई हैं, ये गजब की हो गई हैं। आप क्या मज़ेदार, कहीं भी 50 रुपये, 100 रुपये यूपीआई का उपयोग करिए, ठेले वाले के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए, स्कूटी के पास जाइए, सबके पास आप यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं।
शाउट आउट टू नंदन दिलकेनी
जी, जी बिल्कुल। नंदन जी इसमें उन्होंने चमत्कार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत इसमें अपना योगदान दिया है। तो अब जो हम लोगों का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इसके द्वारा अब हम लोग नए नए फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो क्रेडिट दे सकते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स जो हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, और वो अंडर पेनिट्रेटेड भी है अभी भी। अगर आप ठेले वाले के पास चले जाएं, छोटे दुकानदार के पास चले जाएं, उसको किफ़ायती तरीके से उसको ऋण नहीं मिलता है, अफोर्डेबल क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, वो हम लोग दे सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरा एरिया है। मैं आपको ये भी बता,
माइक्रो फाइनेंसिंग यू फील इज एन अपॉर्चुनिटी,
माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है इसमें।
कि हाउ कैन यू डेमोक्रेटाइज, मतलब तुम एकदम छोटे छोटे लेवल पे हर घर तक ये कैसे पहुंचा सकते हो?
और दिलवाना जरूरी है, सबको पेंशन दिलवाना है, सबको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाना है, सबको घर का इंश्योरेंस दिलवाना है, ये कैसे कराया जाएगा? सबको अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, बच्ची की शादी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको सेविंग्स करनी है, वो कैसे होगा? तो ये सब जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, वो बहुत ज़रूरी हैं और बढ़ती रहेंगी। तीसरा आपने कहा भी हेल्थ, क्योंकि एक तो आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आ गया है, और उसके द्वारा हम लोगों ने हर जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है उसको हम लोगों ने कहा है कि आपको 5 लाख रुपए का हम लोग इलाज का पैसा दे देंगे। इसके द्वारा अस्पताल बन रहे हैं, इसके द्वारा क्लिनिक बन रहे हैं, इसके द्वारा डॉक्टर नर्सेज आ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत अवसर आएंगे, चाहे वो डॉक्टर नर्स क्लिनिक के अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट का हो, चाहे होम हेल्थ केयर का हो। कोई बीमार पड़ गया, उसको घर में आपको देखना है, कोविड में कितने लोगों को हम लोगों ने घर में देखा, होम हेल्थ केयर का बड़ा बन सकता है। तो हेल्थ केयर अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है और बढ़ता भी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ केयर का प्रोविजन भी ज़्यादा ज़रूरी होता चला जाएगा। तो ये तीसरा सेक्टर है। चौथा सेक्टर जो मैं मानता हूँ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स। आपने गडकरी साहब को तो बुलाया ही था, उन्होंने बताया था कि हमारी सड़कें अब अमेरिका के, जापान के बराबर होने वाली हैं, और बड़े तेज़ी से, बड़े पैमाने से हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारे हवाई अड्डे बन रहे हैं, हमारी एयरलाइंस ग्रो कर रही हैं। विमानन मंत्रालय में मैंने भी वहाँ अपना योगदान दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब जो हैं इसमें भी बहुत वृद्धि होने वाली है, और इसके कारण सीमेंट, स्टील, ईंटा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। तो एक ये चौथा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो मैं पांचवा एरिया मैं मानूंगा वो मैं कहूंगा कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और वहां भी गडकरी साहब ने बताया था, मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, बहुत ही रोचक था, कि पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, जो हमने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात की, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। तो सब टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, सब थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, सब फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, चार्ज पॉइंट्स बनाए जाएंगे, उनको बिजली देनी पड़ेगी, उनके लिए बैटरीज हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। और इंडिया में इतना वॉल्यूम है, इतना स्केल है कि हम लोग यहाँ बढ़िया तरीका से करें तो हम लोग विश्व के लिए एक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी बन सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखें, हेल्थ सेक्टर देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आईटी सर्विसेज देखें, ज़बरदस्त पैमाने पर यहाँ ग्रोथ होने वाला है।
इन सब में स्टार्टअप्स बनने की अपॉर्चुनिटी है कि ये सब बड़े, इट्स अ in the VC world you say it's a big boys club, right? So do you think it's a this club is like only billionaire club? क्योंकि अगर infrastructure आप देखते हो,
बिल्कुल नहीं राज, क्योंकि जो startups कर सकते हैं, MSME कर सकते हैं, fast growth business कर सकते हैं, वो अधिकांश बड़ी companies नहीं कर सकती हैं। और ये एकदम देखा गया है, इतिहास में देखा गया है कि इनोवेशन जो है, इनोवेशन ज़्यादातर जो है वो स्टार्टअप्स में होता है। स्टार्टअप्स नए नए सॉल्यूशंस लाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की हम लोग बात करें तो वहाँ कौन सी कंपनियाँ हैं? वहाँ ईथर जैसी कंपनी है जो एकदम स्टार्टअप है।
Yes.
आप ऑयलर जैसी कंपनी को देखिए, थ्री व्हीलर्स में आप देखिए, और इधर आप अगर देखें कि फोर व्हीलर्स में टेस्ला है, जैसे कि एकदम इलेक्ट्रिक डिसरप्शन उन्होंने किया है। तो ऑटोमोटिव में भी जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ टेस्ला जाके एक नई कंपनी आई है। तो सब जगह डिसरप्शन का तो आपको अवसर मिलता ही है। और यही है कि आप टेक्नोलॉजी को, आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को, आप किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप डिसरप्शन लाकर एक बड़े स्टार्टअप को खड़ा करें।
आपको सबसे अच्छा स्टार्टअप कौन सा लगता है इंडिया में एट दिस पॉइंट, बड़े कोई स्टार्टअप में से?
नहीं, बहुत सारे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
एक दो नाम ले लो।
मुझे मेक माई ट्रिप बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका हरदम सदुपयोग करता रहता हूँ। सब मैं खुद स्वयं अपनी बुकिंग्स मेक माई ट्रिप पे करता हूँ, और उनका यूजर फ्रेंडलीनेस, उनके सब फीचर्स मुझे बहुत पसंद है। तो मेक माई ट्रिप का मैं बहुत शौकीन हूँ।
आप मिले उनके फाउंडर?
जी बिल्कुल, दीप कालरा जी से मिला हूँ। मुझे मेक माई ट्रिप बहुत अच्छा लगता है। संजीव बिगचंदानी जी हैं जिन्होंने नौकरी किया, वो भी बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है। मेरे स्कूल के क्लासमेट हैं, मित्र हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हम लोग अलग अगल बगल बैठा करते थे स्कूल में, तो इतने पुराने मेरे दोस्त हैं।
वाओ,
उन्होंने भी बहुत अच्छी कंपनी इस्टेब्लिश की है नौकरी। फिर फाल्गुनी जी ने जो नायका बनाया है, वो भी मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है, वो भी एक शानदार कंपनी है। ईथर की तो हम लोगों ने बात की ही की, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। अभी दिल्ली में दो बहुत बढ़िया कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही हैं। एक ब्लू स्मार्ट है, जो आपने ज़रूर देखा होगा। ब्लू स्मार्ट कितना बढ़िया काम कर रही है, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक बैटरी स्मार्ट नाम की कंपनी है जो बैटरी स्वैपिंग थ्री व्हीलर्स के लिए कर रही है। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं जो बड़े जल्दी से स्केल अप भी कर रहे हैं। और जैसे नौकरी हो, मेक माई ट्रिप हो, नायका हो, ये तो स्केल अप भी कर गए हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। ओयो का भी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि सब जो होटल्स को अच्छा क्वालिटी देकर, अच्छा सॉफ्टवेयर देकर स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज आए हैं। और अगर आप इतिहास में जाएं तो एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिगो बहुत अच्छी कंपनी है। कितना बढ़िया बढ़िया इन लोगों ने काम किया है।
आपने इन सब स्टार्टअप्स में नाम लिया इंडिगो, ठीक है, एंड आपने एयरलाइंस बहुत क्लोजली देखा है एविएशन स्पेस को, राइट? तो एयरलाइंस फेल क्यों हो जाती है? मतलब ऑलमोस्ट हर एयरलाइन फेल हो जाती है, एंड दिस इज नॉट इंडिया, ये ग्लोबली ट्रेंड है कि एयरलाइन और एविएशन बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर एक सक्सेसफुल है तो उसके पीछे 25 अनसक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, और इंडिया में तो शायद आज तक, अभी तक लॉन्ग ड्यूरेशन में इंडिगो के अलावा कोई भी सक्सेसफुली बना नहीं।
ऐसी बात तो नहीं की जा सकती है। आकाश एयर भी अच्छा कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि एयर इंडिया भी बहुत पहले सफल थी और आगे भी बहुत सफल होगी अब जब टाटाज ने उसको ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आपके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स नहीं हैं, हैं बहुत, लेकिन सिर्फ दो बिजनेस मॉडल हैं जो चल सकते हैं, और उनको ईमानदारी से चलाना होता है। उनका एग्जीक्यूशन भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप दो बिजनेस मॉडल से अगर आप चले गए तब फिर आप फेलियर हो जाते हैं। तो कौन से दो बिजनेस मॉडल हैं? एक है इंडिगो का डिस्काउंट कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर, उसको एकदम डिसिप्लिन्ड वे से, अनुशासित तौर पे आपको एग्जीक्यूट करना है। आप एक ही किस्म की आप प्लेन खरीदिए, A320 को खरीदिए, पॉइंट टू पॉइंट उसको बढ़िया चलाइए, खर्चे अपने कम रखिए और लोगों को खुश करिए। इंडिगो का आज कस्टमर एक्सपीरियंस कितना बढ़िया, लाजवाब है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है इंडिगो का।
इंडिगो का मोट क्या लगता है आपको, लगता है क्या है मोट उनका?
इंडिगो का मोट तो बहुत हो गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन लोगों की फ्लीट अब इतनी हो गई, शायद 300 प्लेन अब उनके हो गए हैं। इतना बढ़िया उनका नेटवर्क बन गया है कि उसको अब कोई पार नहीं कर सकता है। 60% मार्केट शेयर हो गया है, नंबर वन। नंबर टू, उनका सिटी टू सिटी जो कनेक्शंस हो गए हैं, अब दिल्ली मुंबई करिए, इतने बढ़िया उनके टाइमिंग्स हैं, तो वो भी एक उनका एक बहुत अच्छा मोट हो गया है। तीसरा जो उनका अच्छा मोट हो गया है कि उनके पास प्लेन खरीदने के बड़े किफ़ायती तरीके हो गए हैं। लीजिंग जो वो लोग करते हैं वो भी बहुत बढ़िया उनका मॉडल है। तो ये डिस्काउंट कैरियर वाला जो बिज़नेस मॉडल है उसको उन लोगों ने परफेक्ट इम्प्लीमेंट किया है और वो मॉडल बढ़िया चलता है। एक दूसरा बिज़नेस मॉडल है वो है लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल बिज़नेस मॉडल। और उसमें अगर आप एमिरेट्स को देखें, आप क्वांटस को देखें, आप सिंगापुर एयरलाइंस को देखें, ब्रिटिश एयरवेज को देखें, ये सब सफल हुए हैं। तो ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल जो कैरियर्स होते हैं वो भी सफल होते हैं। और जहाँ तक अगर आप एयर इंडिया को आप देखें तो एयर इंडिया भी वही दोनों स्ट्रेटजीज अपनाया है उसने। एक एयर इंडिया एक्सप्रेस उन्होंने अपनाया है जो डिस्काउंट कैरियर डोमेस्टिक चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट उसका चलेगा। और दूसरा एयर इंडिया जो विस्तारा और एयर इंडिया जो मर्ज करने वाले हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर एमिरेट्स के स्टाइल के, सिंगापुर एयरलाइंस के स्टाइल के वो लोग एक बनाने वाले हैं जो आपको मुंबई से न्यूयॉर्क ले जाए, मुंबई से टोक्यो ले जाए, मुंबई से लंदन ले जाए। तो वो अच्छा एक बिजनेस बनेगा। तो ये दो अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं, आप बढ़िया इनका एग्जीक्यूशन करिए तो आप बढ़िया कर सकते हैं।
सो जो तीसरे टाइप का होता है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत प्रीमियम सर्विसेज देने की कोशिश करो, कम्युनिटी बनाओ,
वो चलता नहीं है। हमारे देश के जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा पैसा देना, प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं उसके लिए। और मैस मार्केट जो है वो कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी ढूंढता है और वो परफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन इस समय इंडिगो का है। और हमारे जो घरेलू फ्लाइट्स हैं वो अधिकांश 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो 2-2.5 घंटे में आप बिजनेस क्लास का पैसा क्यों दें? तो बिजनेस क्लास वाले जो मॉडल्स हैं देश में नहीं चल पाते हैं।
तो अभी विस्तारा जैसे ये ट्राई कर रहा है थोड़ा सा,
तो विस्तारा जो है उसका लिमिटेड एक्सपेंशन हुआ है। उनके कुछ जो रूट्स हैं जैसे दिल्ली मुंबई, मुंबई बैंगलोर, दिल्ली बैंगलोर, ऐसे कुछ कुछ रूट्स हैं जहां आपके बिजनेस ट्रैवलर्स हैं और जहां आप इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी आप चाहते हैं तो वहां आप बिजनेस क्लास थोड़े से कम सीट्स आप रख सकते हैं, वो फिर आप उनको बेच सकते हैं, उतना वो बेच पाते हैं। तो वो थोड़ा एकदम मतलब नीच एक स्मॉल स्केल पे आप उस बिजनेस मॉडल को चला सकते हैं। लेकिन उसका अगर एक्सपेंशन करना है तो चाहे आप डिस्काउंट कैरियर करिए
या लॉन्ग
डोमेस्टिक या लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल करिए।
हाँ ये ट्रू, दैट्स इट मेक सेंस कि या तो तुम बहुत लंबी ड्यूरेशन वाले पे किंग बन जाओ, स्पेस को मार्केट कैपिटलाइज कर लो, या तुम
और हैं भी आप एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, बड़े अच्छे एयरलाइंस हैं, उनका मार्केट कैप काफी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, अच्छा चल रहा है।
हाँ, पीपल लव फ्लाइंग थ्रू सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स, मतलब एक अलग फैंडम है उनके लिए। इवन तो आप उनमें इकनॉमी जाओ, उनकी इकनॉमी भी बाकी एयरलाइन से महंगी होती है एंड वो प्रीमियम कमांड करते हैं बिल्कुल मार्केट
के बाद। 8-10-16 घंटे बैठना है ना, तो तब आप कंफर्ट के लिए पैसा देने को तैयार हैं। 2 घंटे में आप पैसे देने को तैयार नहीं।
हाँ, 2 घंटे से निकल जाएंगे,
निकल जाएंगे,
एक झपके लिए निकल गए। ओके, आपने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया कैसे चाइना को राइवल कर सकता है प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बनने में। प्लीज एक्सप्लेन करोगे कि कैसे इंडिया चाइना, आज ग्लोबल फैक्ट्री बोलते हैं जिसको, वर्ल्ड की फैक्ट्री है जिसने ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में तहलका मचाया है, जो सबसे बड़ा है। इंडिया में भी बहुत गुड्स वहीं से आते हैं, वर्ल्ड वाइड गुड्स अमेरिका में वहीं से आते हैं, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग हब है।
तो इंडिया को दुनिया का सर्विस सेंटर कहते हैं कि यहाँ कोई भी सर्विसेज करानी है वो
भारत इंडिया से कराओ, यस,
भारत से कराओ। लेकिन दुनिया की फैक्ट्री चाइना को कहते हैं।
यस।
और इसके कारण चाइना के GDP में ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त आया। आज के समय चाइना और इंडिया की आबादी लगभग एक है, 140 करोड़ के आसपास दोनों की लगभग उतनी आबादी है, लेकिन चाइना की GDP हमसे 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा। तो अगर हमारी GDP 4 ट्रिलियन के आसपास है तो उनकी 20 ट्रिलियन के आसपास है, तो हमसे वो 5 गुना आगे हैं। और इसलिए क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ध्यान दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देने के लिए 3-4 चीज़ें जो उन्होंने की जो उनको बहुत मतलब आज के समय बढ़िया फैक्ट्री बनाने में काम दे रही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का बना दिया। कोई भी चीन जाकर देखेगा बोलेगा यार ये तो दुनिया का सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और है भी। हम लोग अभी मुंबई से लेके अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, उन्होंने पूरे देश में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बना दिया है। आप लासा जो एकदम हिमालयाज में तिब्बत का कैपिटल है, लासा तक उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दिया। तो ये इनका कमाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, आपके रोड्स अच्छे हैं, आपके बुलेट ट्रेन अच्छे हैं, आपके हवाई अड्डे अच्छे हैं, आपके पोर्ट्स अच्छे हैं, तो आपके लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। तो हमारे देश में कहीं भी कोई चीज़ आप बनाए, वस्तु को बनाए, तो उसमें लॉजिस्टिक्स का खर्चा 8-10% हो जाता है, उनमें लॉजिस्टिक्स का खर्चा 3-4% ही है। तो 4-5% बचत सिर्फ लॉजिस्टिक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी कम रखा है, तो आप इंपोर्ट्स भी कम पैसे से कर सकते हैं, कोई आपको वहां ज्यादा देना नहीं होता है, और इस कारण आपके इंपोर्ट्स कम पैसे पे आते हैं, आप फिर उस पर वैल्यू एड आप मैन्युफैक्चरिंग अपना कर सकते हैं। तो उन्होंने इंपोर्ट्स को भी काफी कम रखा है, काफी वो लोग चीजें इंपोर्ट करते हैं, भारत से भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तीसरा काम जो उन्होंने क्या किया है, और ये थोड़ा इन्होंने इसमें लगभग धांधलेबाजी भी की है, कि इन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत कम रखा है। क्योंकि आप अगर बैंक से जाकर आप लोन लें भारत में किसी कंपनी को, तो 10-12% आपको देना पड़ता है, वहां 4-5% में आपको ऋण मिल जाता है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी, क्योंकि सब बैंक्स उनके जो हैं स्टेट कंट्रोल्ड हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है बहुत कम है, और इससे भी इनको बड़ा फायदा मिलता है। फिर जो इन लोगों ने काम किया है कि इन लोगों ने अपने एनर्जी सिस्टम को बड़े तेजी से बढ़ाया है, तो बड़े सारे कोल प्लांट इन लोगों ने बना दिए हैं, बहुत सारा एनर्जी इनके पास अब है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आपको कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम है। हम लोगों का कॉस्ट ऑफ एनर्जी आप किसी भी फैक्ट्री से पूछ लीजिए 8-10 रुपये पर यूनिट, उनके यहाँ 4-5 रुपये पर यूनिट है। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, आपका कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम है, आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम है, तो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। और ये सब होने के बाद भी उन लोगों ने रिसर्च में बहुत पैसा जो है डाला है, बहुत पैसा डाला है। हम लोग अगर पर GDP अपना 0.7% के आसपास हम लोग रिसर्च में डालते हैं, वो लोग 2-3% ऑफ GDP रिसर्च में डालते हैं। उनकी GDP हमसे 5 गुना बड़ी, तो हमसे 15 गुना ज्यादा वो लोग खर्चा कर रहे हैं रिसर्च पे। तो इसलिए आज के समय अगर आप बैटरीज देखें, बैटरी केमिस्ट्री देखें, उसमें चाइना आ गया है। आप सोलर पैनल देखें, उसमें चाइना आ गए हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखें, उसमें चाइना आ गए हैं। आप फार्मास्यूटिकल्स कई किस्म के देखें, केमिकल्स को देखें, उसमें चाइना आ गए हैं। तो सिर्फ किफायती तौर पे, कॉस्ट पे सिर्फ वो कम्पीट नहीं कर रहे हैं, अब वो क्वालिटी पे भी कम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि उन लोगों को अब ये रिसर्च का भी बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है।
अब ये तो आपने चाइना को बता दिया कि चाइना क्यों जीता, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जीता, वर्ल्ड वाइड वो क्यों ग्लोबली सबसे पावरफुल क्यों बना मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली में। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए सो दैट हम ये आने वाले 15-20 साल में हम लोग ज़्यादा बड़े ग्लोबल पावर बन जाएं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
तो हमें तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं, उनका हमें पूरा सदुपयोग करना है।
जैसे
और हम लोग सॉफ्टवेयर में, हम लोग सर्विसेज में, हम लोग इनोवेशन में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, जैसे कि सोफिस्टिकेटेड ऑटो पार्ट्स हो गए, जैसे जेनेरिक ड्रग्स हो गए, इन सब चीज़ों में जहाँ इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, उसमें हम लोग बड़े सफल हुए हैं। तो हम लोगों को वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग की ओर देखना चाहिए, वो तो हम लोगों को करना ही चाहिए। अब टेक्सटाइल्स में अगर हम देखें, तो टेक्सटाइल्स में जो वो टेक्सटाइल्स हैं जो बड़े इंजीनियर्ड टेक्सटाइल्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ आपको कारीगरों की ज़रूरत होती है, एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत होती है, नए नए डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, उसमें हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ्स का पूरा सदुपयोग करना ही चाहिए। साथ साथ जितना हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करें, जितना हम लोग कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दें, जितना कॉम्पिटिशन को प्रोत्साहन दें, उतनी हमारी कंपनीज अच्छा होंगी। तो हम लोग छुप कर जीत नहीं सकते। आज के समय अगर विराट कोहली जाके 49 सेंचुरी मार सकते हैं, तो सबके खिलाफ खेल सकते हैं, सबको वो पराजित कर सकते हैं, सबको हरा सकते हैं। तो हमें भी वही एकदम मतलब बुलंद होकर, एकदम कंपेटिटिव होकर, सबका सामना करके सबको हम लोगों को पराजित करना पड़ेगा। तो ओपन इकोनॉमी भी हम लोगों की होनी चाहिए। हम आपके मैदान में आके आपको ही हराने वाले हैं, आपके यहाँ ही हम शतक मारने वाले हैं। और जब हमारे पास खिलाड़ी जैसे बुमराह हो गए, विराट कोहली हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, इतने बढ़िया बढ़िया जब खिलाड़ी हैं, तो हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। तो वही सोच हम लोगों की होनी चाहिए कि ओपन कंपेटिटिव इकोनॉमी हम लोग बनाएं, और जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उन स्ट्रेंथ्स पे हम ध्यान दें।
बट डू यू फील चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज क्लोज इकोनॉमी भी था?
नहीं, उनकी वो पॉलिटिकल सिस्टम उनका बहुत क्लोज है, लेकिन इकोनॉमी बहुत ओपन है।
नहीं, मतलब उन्होंने गेट करके रखा, राइट? अमेज़न को एंटर नहीं करने दिया, तभी उधर एक अलीबाबा बना। उन्होंने ऊबर को एंटर नहीं करने दिया फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, तभी उधर डीडी शाइंग बना। उन लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स, इनको नहीं एंटर करना, तभी टिकटॉक बना।
क्योंकि वो एक सर्वेलेंस टाइप की गवर्नेंस वो लोग करते हैं कि हरदम सब पे देखते रहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनेट को उन लोगों ने कोई छूट नहीं दी, भले नकल किया लेकिन उसको ओपननेस नहीं दिया, उसको छूट नहीं दी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में छूट दी, तो सब जो बड़े बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहाँ हैं।
ओके।
सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाते हैं वो वहाँ हैं, एप्पल बहुत बड़े पैमाने पे है, तो मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने छूट दिया। इसलिए आज के समय सर्विसेज में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्विसेज की इकोनॉमी बहुत ही ओपन और कंपेटिटिव है।
ओके, आपने एक बात बोली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर आज मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो मुझे वो पैसा बहुत महंगे में मिलता है।
बिल्कुल सही,
राइट? वो मुझे 10-12% में मिलता है।
वो तो ऋण हुआ। आप जब इक्विटी लेना चाहेंगे तब आपको 20-25% देना पड़ेगा,
तो और महंगा होता है,
और महंगा,
राइट? तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कैसे हो सकती है, और अगर करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? मतलब क्यों नहीं करते जब क्लियर इंडिकेशन है? जैसे यूएस में अगर आप देखो तो वीसी वर्ल्ड टेक्निकली जो लास्ट फ्यू ईयर्स में जो बढ़ा, और जो पैंडेमिक के बाद तो एकदम ही एक्सेलरेट जो किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलमोस्ट इज नेक्स्ट टू जीरो हो गया था उधर, राइट? तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम होता है तो पैसा फ्री में जब मिलता है या सस्ते में मिलता है, तब आप वो पैसा यूज़ करके बोल्ड बेट्स ले सकते हो, फेलियर रेट अपना, आप फेलियर से डरोगे नहीं, एक्सपेरिमेंट रेट आपका बढ़ा सकते हो, तो तेजी से आप नई नई चीज़ें कर सकते हो, राइट? तो फिर क्यों नहीं हमारी इकोनॉमी?
बिल्कुल सही कह रहे हैं राज। और ये जो है ये फाइनेंस की बात आ जाती है कि आप फाइनेंस में आप कितना अच्छा आप सिस्टम चला रहे हैं। अगर आप फाइनेंस अच्छा चलाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बड़ा एफिशिएंट है। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भारत में कम करना है तो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को सेविंग्स और करनी चाहिए, यानी बचत और की जाए। भारत में बचत का जो रेट है, मतलब अगर आपको 100 रुपये तनख्वाह में मिलते हैं तो आप उससे 25 रुपये बचाते हैं। अगर हम लोग 35-40 उसमें बचाने लग जाएं तो हमारे पास सेविंग्स ज़्यादा हो जाएंगी और वो बैंक में चले जाएंगे। जब बैंक में पैसा ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, आपको ऋण भी कम दाम में मिलेगा। चाइना में सेविंग्स जो हैं 35% के आसपास है, तो डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं उनको हम लोगों को बढ़ाना है, लोगों को और बचत करने की ज़रूरत होगी। हम लोगों के यहाँ थोड़ा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, बचत थोड़ी कम होती है, तो इसलिए बैंक में पैसा कम जाता है। तो एक तो ये है कि हम लोगों को एज एन इकोनॉमी सब कस्टमर्स को, सब कंज्यूमर्स को थोड़ा बचत ज़्यादा करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा हमको सरकार में भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। आज का में सरकार जो है वो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 10% ऑफ जीडीपी हम लोगों का घाटा चलता है, फिस्कल डेफिसिट 10% ऑफ जीडीपी है। जीडीपी हमारी करीब 300 लाख करोड़ जैसे मैंने बताया, यानी आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर देखें तो 30 लाख करोड़ हम लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि टैक्स से जो हम लोगों को मिल रहा है उससे हम लोग 30 लाख करोड़ का ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। कि वो 30 लाख करोड़ हम लाते कहाँ से? जो आप बैंक में पैसे डालते हैं वही सरकार उठा लेती है। तो आपकी सेविंग्स थोड़ी कम है, बचत थोड़ी कम है, फिर उस बचत में सरकार 30 लाख करोड़ ले लेती है, तो फिर बिजनेस को फिर कम मिले? पैसे मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो सरकार को भी थोड़ा कम खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन सबको चाहते हैं कि सब कुछ मुफ्त में मिले। तो ये भी एक दिक्कत है हम लोगों को, सरकार के खर्चे कैसे कम हो, क्योंकि सरकार के खर्चे नहीं कम होंगे तो हमें ऋण में उसको बोरो करना पड़ेगा और वो बैंकों से लेना पड़ेगा और बैंकों में आपकी जो सेविंग है वो सेविंग हम लोग ले जाते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि हम लोगों को जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको और भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजों पे हम लोगों को काम करना है।
ओके, एक आर्टिकल लिखा था अपना इंटरेस्टिंग कि ऐसी 7 चीजें करनी चाहिए इंडिया को जो पोजीशन ऐसी पोजीशन पे लेके आएगा हम फ्यूचर में वेल प्रिपेयर हो जाएंगे उन 7 पॉलिसीज से। तो क्या वो 7 पॉलिसीज हैं? कैन यू एक्सप्लेन टू
नहीं बहुत सारी तो
या 7 चीजें इनसेड ऑफ पॉलिसीज इनफैक्ट मेक इट इजी बिकॉज आपने बहुत पूरा पॉडकास्ट हमें बड़े इजी टर्म्स में आपने बहुत सारी चीजें सिखाई है। ओके, तो इजी वे में बताओ कि ऐसी 7 चीजें क्या है जो इंडिया को करनी चाहिए अभी आज से लेके, या जितने लोग देख रहे हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करें, इनफैक्ट नॉट ओनली गवर्नमेंट विद एवरीथिंग। आपको लगता है जो हमको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करेगी कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको हम बहुत बेहतर तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को ले पाएं, और जो हम विजन देख रहे हैं कि 20 साल में हो वो 15 साल में हो जाए और वो 12 साल में हो जाए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 7 थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ?
ये तो बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि हम लोगों को सप्त ऋषि, हम लोगों के कौन से ऐसे 7 सप्त ऋषि होने चाहिए जिनके द्वारा हम बड़े तेजी से विकास करें, तरक्की करें। तो मैं बताता हूँ, सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बात करी ली है कि हम लोगों को अपने युवाओं को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना काबिल बनाएं, कितना उनको हम लोग क्षमता दें, किस प्रकार की ट्रेनिंग उनको मिले। तो एजुकेशन और शिक्षा और ट्रेनिंग में हम लोगों को सर्वप्रथम हम लोगों को ध्यान देना है, और उससे जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 2, हम लोगों को जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास इतना बढ़िया हमारे पास मानव साधन है, हेल्थ केयर रिसोर्स है, तो उसको हम लोग स्वस्थ भी रखें, उसमें बीमारी ना हो, कोविड जैसे बीमारी ना आए, लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक इस टाइप की चीज़ें ना हो, हमारे बच्चे जो हैं उनका अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास हो, हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा, पोषण के द्वारा यही सब होता है। तो ये भी दूसरा जो एक चीज़ है जो हम लोगों को देखना है, पहले तो ट्रेनिंग एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर, तो ये हम लोगों को साधन देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जिस पे लंबी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बढ़ जाते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो तीसरा मामला जो है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग पूरा एकदम वर्ल्ड क्लास बना दें जैसे गडकरी साहब कर रहे हैं। चौथा जो मैं कहूँगा वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम लोग हरित भारत कैसे बनाएं, नेट ज़ीरो भारत कैसे बनाएं। पांचवा जिस पे हम लोगों की चर्चा हुई है, रिसर्च, और यहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अहम मील का पत्थर साबित होने वाला है जो एक ये संस्था खड़ी की है जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, हमारे IITs के द्वारा, हमारे एम्स के द्वारा, हमारे IIMs के द्वारा, हमारे अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा हमें रिसर्च पे ध्यान देना है, नए नए सोल्यूशंस निकालने, नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज निकालने। तो ये पांचवा हो गया। छठा जो मैंने कहा कि हम लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारी सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे खर्चे कम होने चाहिए, हम लोगों का फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो कम दाम में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे, तो फाइनेंशियल सिस्टम भी हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जो अंतिम जो विषय है वो है व्यापार का, ट्रेड का। तो जैसे हमने कहा कि इम्पोर्ट टैरिफ्स हमारे कम रहें, चीन वगैरह के मुकाबले के हों, हम लोगों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़ें यूरोप के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ, अमेरिका के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी हम अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम रखें, वो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम रखें, हमारी चीज़ों को वो ना रोके, हम उनकी चीज़ों को ना रखें, और अगर हम ओपन और कम्पेटिटिव बनते चले जा रहे हैं जो इन सप्त ऋषियों के द्वारा हम बनते चले जाएंगे, अमृत काल में हम लोग जीते जाएंगे, तो हम लोग सब लोग विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बन जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सबके साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए राज, कि हम सब विराट कोहली जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, जसप्रीत बुमराह जैसे हम लोग खिलाड़ी बने,
टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास।
और हम हैं, क्यों नहीं, हमें बिल्कुल इस पे हम लोगों की आकांक्षाएं होनी चाहिए, आर एस्पिरेशन शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर। एंड उसमें एक बात और राज मैं जोड़ना चाहूंगा कि इंडियंस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी जाएं इंडियंस इतना अच्छा करते हैं, खासकर बिजनेस में देख लें, एकेडमिया में देख लें, मीडिया एंटरटेनमेंट में देख लें, सब जगह हमारे अब स्पोर्ट्समैन भी बहुत ही बढ़िया बनते चले जा रहे हैं, तो वी आर टॉप क्लास इन एवरीथिंग। तो इंडियंस आर ऑलरेडी टॉप क्लास, नाउ वी हैव टू मेक इंडिया टॉप क्लास, द बेस्ट इन द वर्ल्ड.
अमेजिंग. वेल, सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड, सो मेनी थिंग्स यू हैव टॉक्ड अबाउट. इतना सारा मेरे दिमाग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स.
आपको बोर कर दिया राज.
नहीं, आपको बोर कर दिया. आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस. इट वॉज लवली हैविंग यू.
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी वेरी मच राज. इट वॉज अ वेरी वेरी फन सेशन. मुझे भी बहुत मजा आया. आप देखते होंगे कि मुझ में भी थोड़ा बहुत शिक्षक का रूप है, मैं भी थोड़ा बहुत टीचर हूँ. मुझे भी अच्छा लगता है लोगों को समझाना बताना, क्योंकि जब तक हम लोग दुनिया के बारे में ना समझें और ये ना समझें कि दुनिया में परिवर्तन हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो हम लोग दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने को कैसे बेहतर बना सकते हैं.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड. हमें बताओ कि क्या आप और ऐसे पॉलिटिकल गेस्ट देखना चाहते हैं कि नहीं. आप कौन से टाइप के गेस्ट देखना चाहते हैं और उन गेस्ट से हम क्या क्वेश्चंस पूछें, हमें वो कमेंट्स में बताओ. क्योंकि जितना बेहतर आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, उतने ही बेहतर हम आपके लिए एपिसोड्स ला सकते हैं. एंड बिफोर यू लीव, यू नो व्हाट टू डू. शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट वन पर्सन, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट and share this episode with everyone. Until the next episode, keep figuring out.